ಮಣಿಂದಿಯ ಮಣುವ ಮಮ ಪತ್ಥ ಸೋಖ ಮಣವಜ್ಜಂ ಕೇವಲ ಪಹೋಹಣಿಜ್ಜಿಯ ದುನ್ನಯತಿ ಮಿರಂ ಜಿಣಂ ನಮಃ. ಎ ವೀರಸೇನಾಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಧೌಲಾ ಟೀಕಾ ಹೇ ಜೋ ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮ್ ಉಸ್ಕಿ ಟೀಕಾ ಹೇ. ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತಬಲಿ ಔರ್ ಪುಷ್ಪದಂತ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಲಿಖಾ ಥಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಉಪದೇಶಕ ಉನ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಥೆ ದರ್ಸೇನ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಯಹಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 56 ಪರ್ ಆ ಗಯೇ ಹೈ. ಗ್ರಂಥ ಕೆ ಶುರು ಮೇ ಛೇ ಬಾತೆ ಬತಾಯಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಮಂಗಲ್, ನಿಮಿತ್ತ, ಹೇತು, ನಿಕ್ಷೇಪ್, ಪರಿಮಾಣ, ನಾಮ ಔರ್ ಕರ್ತಾ ಖ್ಯಾಲ ಹೈ ನಾ. ಔರ್ ಯೇ ಛೇಹೋ ಬಾತೋ ಮೇ ಹರೇಕ್ ಬಾತ್ ಜೋ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಛೇ ಛೇ ಪದ್ಧತಿ ಸೇ ವರ್ಣನ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಮಂಗಲ್ ಕಾ ಛೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ವರ್ಣನ ಹೋಗಾ ತೋ ಉನ್ ಛೇ ಪ್ರಕಾರೋ ಮೇ ಪಹಲೆ ಧಾತು ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಫಿರ್ ನಿಕ್ಷೇಪ, ಉಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ನಯ, ಏಕಾರ್ಥ, ನಿರುಕ್ತಿ ಔರ್ ಅನುಯೋಗ. ಅನುಯೋಗ ಮೇ ಭೀ ಛೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಜನೆ ಪರ್ ಜೋ ಉತ್ತರ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ನೆ ಕಿಮ್ ಯಾನಿ ಪದಾರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕಸ್ ಯಾನಿ ಕಿಸ್ಕಾ ಹೈ, ಫಿರ್ ಕೇನ್ ಯಾನಿ ಕಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಕಥ ಯಾನಿ ಕಹಾಂ ಪರ್ ಹೈ ಯಾ ಕಿಸ್ಮೇ ಹೈ ಔರ್ ಕಿತ್ನೆ ಕಾಲ ತಕ್ ರಹೇಗಾ ಔರ್ ಕಿತ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ, ಐಸೆ ಛೇ ಛೇ ಬಾತೆ ಉಸ್ಮೇ ಆತೆ ಅನುಯೋಗ ಮೇ. ತೋ ಇಸ್ ತರಹ ಸೇ ಹಮ್ ವರ್ಣನ್ ದೇಖ್ತೆ ದೇಖ್ತೆ ಉಸ್ಕಿ ಬಹುತ್ ಚರ್ಚಾ ಹೋ ಗಯಿ. ಉಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜೋ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮ ಕಾ ಜೋ ಪ್ರಥಮ ಮೇ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೋ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ಯಹಾಂ ವರ್ಣನ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಅರಿಹಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಔರ್ ಸಾಧುಂ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಹಮ್ನೆ ದೇಖ್ ಲಿಯಾ. ಯಾನಿ ಯಹಾಂ ಮಂಗಲ್ ಜೋ ಕಿಯಾ ಉನ್ಹೋನೆ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಯಹಾಂ ಬತಾ ದಿಯಾ. ತೋ ಅಬ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಹಾಂ, ಮಂಗಲ್ ಕೆ ಬಾದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬತಾಯಾ, ಕಿಸ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇ ಯೇ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ರಚನಾ ಹುಯಿ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ನೆ ಕಲ್ ದೇಖಾ ಥಾ ಇಸ್ಮೇ 56 ಪೇಜ್ ಪರ್. ವೋ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೆ ನೀಚೆ ಬೀಚ ವಾಲಾ ಜೋ ಹೈ ನಾ ಬದ್ಧ ಬಂಧ ವಗೇರೆ. ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಜೋ ಬದ್ಧ ಯಾನಿ ಬಂಧಾ ಹುವಾ, ಬಂಧ ಬಂಧ ಕೆ ಕಾರಣ, ಮುಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಔರ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ 6 ತತ್ವೋಂ ಕೋ ನಿಕ್ಷೇಪ, ನಯ, ಪ್ರಮಾಣ ಔರ್ ಅನುಯೋಗ ದ್ವಾರೋಂ ಸೇ ಭಲಿ ಭಾಂತಿ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಭವ್ಯಜನ್ ಉನ್ಕೆ ಜ್ಞಾತಾ ಬನೆ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಎ ಉನ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇ, ಭವ್ಯೋಂ ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇ. ಪಿನಾಂಗ ಆಪ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಬೈಠ್ನಾ. ಆಜ್ ನೀ ಆನೆ ವಾಲೆ, ವೋ ಬಾರ್ ಗಾಮ್ ಜಾನೆ ವಾಲೆ. ಮುಕ್ತ ನೇ ಮೋಕ್ಷ, ಮುಕ್ತ ತೋ ಜೀವ ಕಹೆಂಗೆ, ಜೀವ ಮುಕ್ತ ಹುವಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ವೋ ಮೋಕ್ಷ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಬದ್ಧ ಹೈ ನೇ ಜೀವ ಬಂಧಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಯೇ ಜೀವ ಕಿ ಅವಸ್ಥಾ ಬತಾ ದೇ. ಔರ್ ಬಂಧ ಹೈ ನೇ ವಹಾಂ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಕಾ ಬಂಧನ್, ಬಂಧನ್ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಬಂಧ ಸೇ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ. ಔರ್ ಬದ್ಧ ಹೈ ನೇ ಬಂಧಾ ಹುವಾ, ವೈಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೈ ನೇ ಛೂಟಾ ಹುವಾ ಔರ್ ವೋ ಜೋ ಛೂಟ್ ಗಯಾ ಹೈ ಕರ್ಮೋ ಸೇ, ಕರ್ಮ ಕಾ ಬಂಧ ಥಾ ಅಭಿ ಕಮ್ ಬಂಧ ಛೂಟ್ ಗಯಾ ವೋ ಮೋಕ್ಷ ಹೋ ಗಯಾ ಐಸಾ ಕಹೆಂಗೆ ಹಮ್. ತೋ ಯೇ ಭವ್ಯ ಜನ್ ಇನ್ ಬಾತೋಂ ಕೋ ಜಾನೆ ಉಸ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇ ಯೇ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ರಚನಾ ಹುಯಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯಹ ಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅರ್ಥ ಪ್ರರೂಪಣಾ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಸೇ ಔರ್ ಗ್ರಂಥ ರಚನಾ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಗಣಧರದೇವ್ ಸೇ ಅವತೀರ್ಣ ಹುವಾ ಹೈ. ಯಾನಿ ಕಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ವೋ ತೋ ಬತಾ ದಿಯಾ ಔರ್ ಯೇ ಕಿಸ್ನೇ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಭೀ ಬಾತ್ ಇಸ್ಮೇ ಆ ಗಯಿ ಕಿ ಜೋ ಮೂಲ ಅರ್ಥಕರ್ತಾ ಜೋ ಹೈ, ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಜೋ ಹೈ ಪದ, ಯೇ ಉಪದೇಶ ಬತಾನೆ ವಾಲೆ ಜೋ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಗಣಧರೋ ನೇ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಹೈ. ಕೋಯಿ ಆಚಾರ್ಯ ಐಸಾ ನೀ ಕಹತೆ ಕಿ ಮೈನೆ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಕಿ ಮೂಲ ಉಪದೇಶ ಜೊ ಚಲಾ ಆಯಾ ಹೈ ಪರಂಪರಾ ಸೇ. ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ಯೇ ಬತಾ ರಹಾ ಹೂಂ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ವೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಸ್ಕಾ ಯೇ ನಹೀ ಹೋಗಾ, ಪ್ರಮಾಣ ನಹೀ ಹೋಗಾ, ಯೇ ಛದ್ಮಸ್ತ ಕಿ ರಚನಾ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಿ. ಕ್ಯೂಕಿ ಇಸ್ಮೇ ಜೋ ಬಾತೆ ಅಭಿ ಹಮ್ ಸೀಖನೆ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ ವೋ ಛದ್ಮಸ್ತ ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಕೈಸೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಕೆ वो उसके विषय नहीं है। हम भी जानते हैं छद्मस्थ के ज्ञान का विषय है, पर कैसे? परोक्ष, क्योंकि जो भगवान ने प्रत्यक्ष जानकर बताया है उसको हम जान रहे हैं। यानी वो हम जान नहीं सकते ऐसी बात नहीं, परंतु वो परोक्ष ज्ञान का हमारा विषय है और भगवान ने प्रत्यक्ष देखी है। और कोई भी छद्मस्थ अपने मति कल्पना से तो ये कोई लिखे तो उसको तो सच नहीं कह सकते हम, क्या ले? अब शंका पूछते, यहां से हम शुरू करेंगे। द्रव्य और भाव से अकृत्रिम होने के कारण सर्वदा एक रूप से अवस्थित श्रुत का अवतार कैसे हो सकता है? अवतार उसी को कहते हैं जिसने नया जन्म लिया हो, उत्पत्ति हुई ना, अभी अभी उत्पत्ति। अन्य मति क्या मानते हैं? भगवान का अवतार हुआ, हाँ, उसने कोई किसी रूप में जन्म लिया। तो यहाँ कहते हैं ये ग्रंथ का अवतार हुआ, जन्म की उत्पत्ति हुई, ग्रंथ की नई रचना हुई, नई रचना हुई, ऐसा अगर आप कहेंगे तो क्या कहते हैं? द्रव्य और भाव से अकृत्रिम होने के कारण, यानी जो द्रव्य श्रुत है वो भी अकृत्रिम है, अनादि से ही चला रहा है, और भाव श्रुत यानी उस संबंधी जो ज्ञान है वो भी अनादि से चला रहा है, नया कुछ नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही अनादि से है, और वस्तु स्वरूप बताने वाला जो कथन होगा वो भी अनादि से है। इसलिए द्रव्य और भाव की अपेक्षा से श्रुत अनादि का है, तो फिर यहाँ ग्रंथ का अवतार हुआ ऐसे आप क्यों कहते हो? ऐसे शंकाकार का प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या बात बताइए, द्रव्य श्रुत जो है वो अनादि का है, हा? तो ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी या वस्तु स्वरूप जो है वो तो अनादि का है, तो आप कह रहे हैं कि नया अवतार कैसा हुआ? वही अपेक्षा जिसका उत्तर अभी हम देखेंगे, वही अपेक्षा आप नमोकार मंत्र पे लगाइए, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। देखिए,
देखो एक प्रश्न ऊपर एक शब्द है, एक रूप से अवस्थित, अवस्थित यानी उतना का उतना रहना या वैसा के वैसे रहना, उसको अवस्थित कहते हैं। हम कहते हैं ना वृद्धि यानी बढ़ना, हानि यानी हीन होना, और अवस्थित यानी जो का त्यों बनाना। तो एक रूप से अवस्थित होता है यानी जो श्रुत जो है द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत वो अनादि अनंत एक रूप से अवस्थित रहेगा। यानी हमें बहुत चिंता होती है कि अभी ये श्रुत का आगम का क्या होगा, अभी तो पंचम काल है, इसका लोप होने वाला है। तो यहाँ किसी विशिष्ट क्षेत्र की अपेक्षा कोई डरने की बात नहीं है उसकी, ये तो अनादि अनंत हमेशा ही रहने वाला है। तो उसका उत्तर क्या है? देखो यह शंका तो तब बनती जब यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा होती। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो वैसा का वैसा अनादि अनंत है, परंतु यहाँ पर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा होने से श्रुत का अवतार तो बन ही जाता है। यानी यह जो विशिष्ट ग्रंथ की बात कर रहे हैं, इन विशिष्ट शब्दों में जो उसको गूंथा है वो तो बन ही सकता है, ख्याल है ना? जैसे समय सार या शुद्धात्मा का स्वरूप, उसको कथन जो करते आए हैं अनादि से ही करते आए हैं जी, और उसको जान भी रहे, फिर भी अभी जो कुनकुंद आचार्य ने जो समय सार आदि की रचना की, तो ये तो उन्होंने नई ग्रंथ रचना की, उन्होंने अपने शब्दों में उसको गूंथा, तो उस अपेक्षा उसको हम कहेंगे यहाँ सूत्र का अवतार हुआ, ग्रंथ का अवतार हुआ, यानी नया ग्रंथ वहाँ उसकी रचना हो गई। भव्य जीव श्रुत ज्ञान रूप, ऊपर पढ़ना है 35। छद्दव नव पयथे सुयणाणा इच्च दीपते पसंतु भव जीवा इय सुय रविणो हवे उदयो। क्या कहते? छद्दव ने छ द्रव्य, नव पयथे ने क्या हो सकता है? हाँ, नव पदार्थ। सुयणाणा इच्छ दीप्पतेन, या नीचे पढ़ेंगे तो ऊपर का भी फर्क अर्थ लगेगा। भव्य जीव श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य के दीप्त तेज से, श्रुत ज्ञान रूपी दीप्त तेज कहाया, छह द्रव्य और नौ पदार्थों को देखे अर्थात भली भांति जाने, इसलिए श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। ये आगम का उदय हुआ है, श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य कहा इसको। केवल ज्ञानियों ने तो प्रत्यक्ष जाना और बताया, उनके उपदेश के अनुसार ये द्रव्य श्रुत की रचना हुई, और द्रव्य श्रुत को जानकर भाव श्रुत भी वहाँ जीवों ने जान लिया, उनके जो ज्ञान है उसको भाव श्रुत कहते हैं। तो द्रव्य और भाव श्रुत है वहाँ पर, तो ये जो श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य है उसके द्वारा छह द्रव्य नौ पदार्थ आदि उसमें जो वस्तु का स्वरूप है उसको जीव जाने, यही इसका हेतु है। हेतु की बात चल रही नहीं, हमें निमित्त की बात चल रही, निमित्त और हेतु। हेतु तो अब कहेंगे, यहाँ अब हेतु का कथन किया जाता है, इसके आगे हेतु कहेंगे। अभी तक इन्होंने निमित्त कहा, निमित्त ने किसके लिए, किसके निमित्त से रचना हुई और निमित्त ने किसने रचना को की, उसमें भी निमित्त लगेगा। तो तीर्थंकर के उपदेश के निमित्त से ये रचना हुई, गणधरों ने जो श्रुत की रचना की उसके निमित्त से ये रचना हुई, ऐसे दोनों तरफ निमित्त लगाना। यानी सामने जीव जो सुन रहा है वो भी निमित्त, और जिनके द्वारा रचना हुई थी ओरिजिनल वो भी निमित्त, ये दोनों को लिया उसमें। अब हेतु कहेंगे, हेतु यानी ये निमित्त किसके लिए, मगर वो जो आचार्य स्वयं रचना कर रहे हैं उनका हेतु क्या है उसमें, उनको क्या फल है, उनको क्या लाभ है। ये इंदुबेन पूछते हैं हमको क्या, ये हमारा क्या लग, क्या फायदा हा? तो ये हेतु क्या है उसमें, उसकी बात अब कहेंगे। ऊपर लिखा ना श्लोक के नीचे, सांप्रतम हेतु रुच्यते, यानी अब हेतु बताएंगे। पहले कहा था उन्होंने निमित्त बताएंगे करके, 55 पेज पर लिखा था वो 34 गाथा के नीचे, संपही निमित्त मुच्चदे, यानी अब निमित्त का कथन आता है। यानी वहां तो निमित्त का कथन शुरू किया था, अब यहाँ 35 जो उन्होंने लिखी वो तो निमित्त के इस कथन में आ गई। 35 गाथा के बाद अब क्या कहेंगे, अब हेतु बता रहे, अब यहाँ से हेतु का कथन होगा। तो हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष हेतु और दूसरा परोक्ष हेतु। परोक्ष यानी कालांतर के बाद जो कुछ उसमें से फल मिलेगा उसको परोक्ष कहेंगे। एक्चुअली साक्षात हेतु यानी अभी हमको क्या फल मिल रहा है उसकी बात पहले कहेंगे, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष हेतु। शंका, यहाँ पर किसके हेतु का कथन किया जाता है, यहाँ पर समाधान, सिद्धांत के अध्ययन के हेतु का कथन किया जाता है। ये सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए उसका हेतु यहाँ बताया जाता है। उन दोनों प्रकार के हेतुओं में से, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो देखिए ना, तो दोनों में से प्रत्यक्ष हेतु फिर उसके दो दो भेद किए कि साक्षात प्रत्यक्ष हेतु और परंपरा प्रत्यक्ष हेतु। परंपरा ने आगे चलकर उसमें से कौन सी बात मिलने वाली है उसको परंपरा प्रत्यक्ष हेतु कहते हैं। तो उसमें से साक्षात प्रत्यक्ष हेतु क्या बता रहे हैं, यानी अभी क्या फायदा होगा उसका अध्ययन का, तो कहते हैं उनमें से अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, ये ग्रंथ अध्ययन का हेतु क्या है, उसका फल क्या मिलना वाला है। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अज्ञान का विनाश होता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ खाली शब्द ज्ञान नहीं लिखा, सम्यक ज्ञान कह दिया, क्योंकि ये ऐसा ही पात्र शिष्य लिया है कि ये अध्ययन के बाद वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न करेगा, ऐसा लिया। खाली शास्त्र संबंधी ज्ञान होगा ऐसा नहीं लिखा है। और फिर दूसरा क्या और फल मिलता है, हेतु ने उसके लिए नहीं करते परंतु उसका फल क्या मिलता है, तो देव मनुष्य आदि के द्वारा निरंतर पूजा का होना, मुनि है वो देवों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा तो पूज्य होते हैं, तो ये भी वहां हेतु हो गया उसका, वो भी उसका फल है। और प्रत्येक समय में देखो मुनि की पूजा करेंगे अन्य जीव।
देखो यहाँ पर ऐसा बता रहे कि ये शास्त्र पढ़ेंगे तो पढ़ने से तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ये तो वास्तव में मुनियों की अपेक्षा से है, उनको देव और मनुष्य, सम्यक दृष्टि भी मनुष्य होगा तो उसको भी देवों द्वारा पूजा जाता है, तो इनके द्वारा निरंतर पूजा का होना यानी आपकी फेम बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, इस अपेक्षा से है।
क्योंकि ये अध्ययन से दृढ़ता और बढ़ेगी और स्थिरता भी बढ़ेगी। यानी अकेला हेतु बस बाह्य ज्ञान बढ़ाना ऐसी बात नहीं है, श्रद्धान में जो दृढ़ता होगी और जीव की स्थिरता बढ़ेगी, जितनी स्थिरता बढ़ेगी अब आगे तो वो कर्मों की निर्जरा की बात आएगी। तो ये तो अकेले शास्त्र पढ़ने मात्र से तो निर्जरा होने वाली नहीं है, हमने भी पढ़ लिया पूरा 16 भाग, तो क्या हमारे असंख्यात गुणा निर्जरा हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। तो मुनियों ने, जिन्होंने तीन कषाय का अभाव किया है और इनकी इतनी वितरागता है और शास्त्र अध्ययन इनके द्वारा, और क्योंकि उसी की रुचि है तो उसी में उपयोग लगा रहता है और बारंबार अपने शुद्धात्मा की महानता होती है और बार बार उनका जो अधिक स्थिरता हो जाती है, गहराई हो जाती है स्थिरता में, तो उसके कारण उनके असंख्यात गुणा निर्जरा होगी, वो बात यहाँ है। तो देव और मनुष्य आदि के द्वारा निरंतर पूजा का होना, अभी हमने अरहंत में भी पूजे जाते हैं ऐसा कहा था और यहाँ भी पूजे जाते हैं, तो यहाँ अरहंत क्यों नहीं लिया? क्या हम बता सकते हैं इसमें अरहंत नहीं है, मुनि की बात है, ऐसा हम क्या इसमें से डिराइव कर? हाँ बोलो। नहीं मगर यहाँ देखो, यहाँ देव और मनुष्य दोनों ही लिया है। अरहंतों को तो तीर्यंच भी पूछते हैं, अरहंतों को तो तीर्यंच भी होगी ना समोचरण में, देव मनुष्य और तीर्यंच वहाँ तीनों को लेते हैं। हमने अरहंत का स्वरूप इसमें देखा था, देखिए अरहंत शब्द 45 पेज, देव असुर और मनुष्य लिखा था, परंतु वहाँ तीर्यंच भी आते हैं ना समोचरण में, यहाँ देव असुर और मनुष्य लिखा है 45 में, आदि में आ जाएंगे मनुष्यों को, ठीक है। चलो, मनुष्य आदि के द्वारा निरंतर पूजा का होना और प्रत्येक समय में, ये बात आ गई अभी, प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा का होना। असंख्यात गुणित श्रेणी रूप का अर्थ क्या होता है? पहले समय में जितनी निर्जरा हुई, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा कर्म परमाणु वो खिर गए, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणा, चौथे समय में उसमें उससे भी असंख्यात गुणा। भाई वहाँ तीर्यंच नहीं लिखा है, परंतु अन्यत्र कहीं आता है। तो ये असंख्यात गुणा का अर्थ मैं बता रही थी, बिना ख्याल में आता है। पहले समय में जितनी निर्जरा हुई, विशुद्धि इतनी स्टीप राइज है वहाँ कि दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा निर्जरा होती जाती है। ये असंख्यात गुणित निर्जरा की बात है। अमृतचंद्राचार्य ने भी कहा था ना, मम परम विशुद्धिर्भवतु, ये विशुद्धि इतनी बढ़ती है और वहाँ ये असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, शास्त्र लिखने वाले की, क्योंकि उपयोग उसमें इतना है और गहराई में, तो लिखते लिखते कितने बार वो अपने अंतरंग का अनुभव कर लेते हैं, वो लिखना तो रह जाता है, वो बीच बीच में हम कोई लेटर भी लिखते तो बीच में विचार में रुक जाते कि नहीं रुक जाते हा? तो यहाँ तो वो तो आत्मा की बात लिख रहे, तो वो लिखना छूटकर वो भी बार 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 अपना आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। हमें देखने वालों को तो ऐसा नहीं भासित होता कि वो हाँ बीच में रुक गए, चलो अभी अनुभव किया, चलो अभी फिर लिख रहे, ऐसे कुछ नहीं बात है। ये इतना फास्ट होता है तो हम तो देखते हैं, नहीं नहीं मुनिराज तो अभी बैठे हैं लिख रहे हैं, तो बीच बीच में उनका वो चलता रहता है। तो इन सबको क्या कहा? साक्षात प्रत्यक्ष हेतु यानी फल समझना चाहिए। कौन कौन सी बातें की? ये तो अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, देव मनुष्य आदिकों के द्वारा पूजा का होना और असंख्यात गुणी निर्जरा। अब उसमें शंका पूछते हैं, कर्मों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निर्जरा होती है, यह किनके प्रत्यक्ष है? ये किनके प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष कौन जानता है? ख्याल है ना, यहाँ तो प्रत्यक्ष फल की बात की थी। शंकाकार पूछता है कि उनको असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये किसने जाना, किसने प्रत्यक्ष जाना? हम तो आगम के आधार से कहते हैं कि उनकी असंख्यात गुणा निर्जरा कहती है, पर कोई वहाँ प्रत्यक्ष जानने वाला भी होगी कि नहीं होगी, उसकी बात है। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्र का अध्ययन करने वालों की असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रति समय कर्म निर्जरा होती है, यह बात अवधि ज्ञानी और मनपरे ज्ञानियों को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होती है। केवल ज्ञानी तो सब जानेंगे ही जानेंगे, उनकी बात नहीं है, परंतु वहाँ जो अन्य मुनि है उनमें से कोई जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो कहते कि अवधि ज्ञानी और मनपरे ज्ञानी उस बात को जानेंगे। वो तो हाँ, क्योंकि कर्मों की अवस्थाएं जानते ना, कर्म रूपी है, कर्मों को जानते हैं। और उनका ऐसा प्रश्न था, अवधि ज्ञानी कर्मों की निर्जरा को जानेंगे क्या? कर्मों को जानते हैं, हमने देखा था।
देखो,
एक परमाणु तक के जानते हैं सर्वावधि ज्ञानी।
अवधि ज्ञानी जो होते हैं उनके ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय तो पुद्गल ही है, जीव के परिणामों को नहीं जानेगा अवधि ज्ञानी। मन परे ज्ञानी दोनों जानेगा।
मन परे ज्ञानी मन में विचारों को जानेगा, मन में रूपी पदार्थ संबंधी जो विचार चलते हैं उस संबंधी जानेगा।
जीव के भाव हो गए ना, जीव के भाव हो गए ना, तो वो तो अभी मान लीजिए कि आप एक कर्म निर्जरा कर रहे हैं गुणित प्रमाण में, और यहाँ मुनि को ऐसा लगा कि अभी इसकी क्या हालत होगी, ऐसे तो आएगा नहीं ज्ञान में, फिर भी आएगा तो वो जान सके।
अब आगे और बताते हैं शिष्य, अभी परंपरा प्रत्यक्ष हेतु बता, पहले साक्षात प्रत्यक्ष हेतु बताया, अब परंपरा प्रत्यक्ष हेतु, परंपरा ने कालांतर के बाद उसके आगे चलकर, तो कहते हैं शिष्य प्रतिशिष्यादि के द्वारा निरंतर पूजा जाना परंपरा प्रत्यक्ष हेतु है, क्योंकि जब भी ग्रंथ लिखते थे अध्ययन करते थे तभी तो उनकी पूजा हुई अन्य जीवों से, परंतु कालांतर के बाद शिष्यों के शिष्य भी उनकी, अभी हम धवला पड़ रहे हैं तो हम वीरसेन आचार्य को नमस्कार करते हैं, भूत बलि पुष्पदंत के करते हैं, दर्शन आचार्य को करते हैं, ये तो परंपरा से हम उनको नमस्कार करते हैं, तो हमारे द्वारा उनका पूजा जाना, निरंतर पूजा जाना यानी थाली लेकर पूजा करना ये बात नहीं है, निरंतर उनके गुणों का गुणगान अपने मन में सतत वो भाव रहे ना, ये निरंतर पूजा है। तो शिष्य और प्रति शिष्यों द्वारा निरंतर पूजा जाना परंपरा प्रत्यक्ष हेतु है, ये उसका फल है। ये तो साक्षात हेतु दो प्रकार के, यानी प्रत्यक्ष हेतु जो है दो प्रकार के, साक्षात प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष। अब परोक्ष हेतु बताएंगे, परोक्ष क्या लाभ होता है, तो परोक्ष हेतु दो प्रकार का है, एक अभ्युदय सुख और दूसरा नैश्रेय सुख। अभ्युदय सुख यानी जो लौकिक सुख है संयोगों की अपेक्षा, उसको अभ्युदय सुख कहते हैं, जैसे स्वर्गों का सुख है, चक्रवर्ती का है, राजा का है, राजा है मंडलिक है अर्धमंडलिक है, अन्य अन्य जो उसमें जो कोई वेरिएशंस है, तो उनके जो लौकिक संयोग की अपेक्षा से जिसको हम लौकिक में सुख कहते हैं उसको कहते हैं अभ्युदय सुख। और नैश्रेय सुख यानी मोक्ष सुख, अतीन्द्रिय सुख। इनमें से अभी अभ्युदय सुख किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन यहां बता रहे, नीचे की तीन लाइन में देखो, इनमें से साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के कर्म प्रकृतियों के तीव्र अनुभाग के उदय से उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं कि जब हमने सम्य दर्शन का स्वरूप देखा था तब से इवन प्रायोगिक लब्धि से क्या होता है, ये तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा घटता चला जाता है और प्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि विशुद्धि जितनी अधिक है उतने वो कर्मों का, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ता है, तो पूर्व में बांधे हुए साता भी उसमें फल देने की शक्ति बढ़ जाती है, असंख्यात गुणा नहीं अनंत गुणा बढ़ती है और वो प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती चली जाती है। तो अभी इस स्टेज पर जो मुनि आए हैं और उनकी विशुद्धि भी और ही बढ़ रही है अध्ययन के कारण, तो उनके जो साता आदि है उसका फल भी उनको उतने उच्च प्रकार का मिलेगा। उदय में जो अनुभाग का उदय, देखिए उदय तो चार प्रकार का होता है, विशिष्ट प्रकृति का उदय होगा, विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु का उदय होगा, विशिष्ट स्थिति पूरी करके एक समय वाली जो अभी वर्तमान में उदय है उसका उदय होगा, और अनुभाग का उदय होगा। इसमें से जीव का जो कुछ बनता है निमित्त नैमित्तिक संबंध वो अनुभाग से बनेगा, कितने कर्म परमाणु खिल रहे उससे कोई लेना देना नहीं, तो कितना अनुभाग है उसका जीव को फल है। तो यहाँ कहते हैं तीव्र अनुभाग के उदय से उत्पन्न हुआ, ऐसा कहने ये तो कर्म के फल में उत्पन्न हुए ये बातें बताई, ये कुछ अच्छा है ऐसी बातें नहीं है, वो जीव उसको भला नहीं मानता है फिर भी ये फल मिलता है, उसे क्या करे, टाल भी नहीं सकेंगे। क्या क्या फल मिलेगा उसमें, इंद्र सामानिक त्रायत्रिंश आदि देवों में भी उनके अलग अलग कैटेगरीज होती है, सामानिक देवों का नाम है सामानिक, लोकपाल वगैरह उसमें सब आते हैं। कल्पवासी देवों के 10 भेद है, हाँ 10 प्रकार के देव आपने पढ़ा था तत्वार सूत्र में, आपने पढ़ा है हाँ, आपने फिर निकाल के दे सकते हाँ। तो इंद्र सामानिक ताय त्रियुंश आदि आदि में वो सब समझ लेना। देव संबंधी दिव्य सुख, मनुष्यों को ऐसा सुख नहीं होता इसलिए यहाँ दिव्य सुख कहा। अब मनुष्यों में कौन कौन है, तो चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, आपको कोई पहचान वाले हैं क्या? हाँ पराग पिनांग, बलदेव नारायण कोई पहचान वाले हैं आपके? हाँ राम कौन थे? बलदेव। और नारायण लक्ष्मण, हाँ बलदेव और नारायण हमेशा भाई भाई होते हैं। अब कृष्ण नारायण था तो बलदेव कौन थे? वो बलराम, उसी नाम से प्रसिद्ध है ना कृष्ण बलराम। और उनके जो शत्रु है वो प्रति नारायण, जैसे लक्ष्मण नारायण था तो रावण प्रति नारायण, कृष्ण नारायण तो जरासन है वो प्रति नारायण। तो चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, नारायण ये अर्धचक्री होता है। चक्रवर्ती तो 6 खंड का अधिपति है और नारायण 3 खंड का, क्योंकि प्रति नारायण पहले 3 खंड का होता है, उसका पराजय करके ये 3 खंड का अधिपति बन जाता है। अर्धमंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, राजा, अधिराज, महाराजा, अधिराज और परमेश्वर, परमेश्वर यानी तीर्थंकर, मनुष्यों के बारे में बता रहे ना। पहले तो देव संबंधी दिव्य सुख वाले कौन कौन जीव है उसको बताया, मनुष्यों में वो अधिक पुण्यवान जीव कौन कौन से है उसकी बात बताई, उसमें परमेश्वर यानी तीर्थंकर भी आ गए क्योंकि उनके पुण्य का उदय वहां बहुत चल रहा है। तीर्थंकर प्रकृति आदि अन्य पुण्य का उदय चल रहा है ना उसका, उसकी अपेक्षा आदि मनुष्य संबंधी मानुष्य सुख को देव संबंधी दिव्य सुख कहा और मनुष्य संबंधी मानुष्य सुख कहा। अभ्युदय सुख कहते हैं, अभ्युदय सुख की बात है। अब नैश्रेय सुख की बात करेंगे, उसके पहले ये हमने इतने सारे देखे राजा महाराजा वगैरह, वो कहते हैं राजाधिराज महाराजाधिराज ऐसे कुछ वो आ रहे हैं वगैरह वगैरह। साता वेदनी आदि अन्य भी जो कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं उसके उदय में ऐसा फल मिलता है, उस फल की चाह नहीं होती जीव को, सम्यक दृष्टियों को तो होती नहीं। और ऐसा जो सुख है, ऐसी जो विशेषता बातें होती हैं वो तो सम्यक दृष्टियों के मुनियों के वगैरह ऐसे उनको ये बातें प्राप्त हो जाती है, सहज ही प्राप्त होती है। अब ये राजा किसको कहना वगैरह वगैरह ये बातें अभी कहेंगे, ऊपर एक एक श्लोक पढ़ के उसका अर्थ लगाएंगे। 36वां ऊपर है, अष्टादश संख्यानाम श्रेणीनाम अधिपतिर्विनम्राणाम राजस्यात्मकुटधर कल्पतरु सेवमानानाम। अष्टादश यानी 18, क्या कहते हैं नीचे, जो नम्रीभूत 18 श्रेणियों का अधिपति हो, या 18 श्रेणियां क्या है वो आगे बताने वाले। तो 18 श्रेणियों का जो अधिपति है, मुकुट को धारण करने वाला हो, मुकुट धारक है उसका, और सेवा करने वालों के लिए कल्प वृक्ष के समान हो, उसे राजा कहते हैं। यानी उनके सेवक लोगों को खुश रखते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो ये राजा की डेफिनेशन हो गई। अभी उसके लिए जो 18 श्रेणियां कौन सी है, यानी कौन सी 18 बातों के वे अधिपति है, उसकी बात आगे के गाथा में बताते हैं। यहाँ प्रकरण में उपयोगी गाथाएं उद्धृत की जाती है, यानी उद्धृत की जाती है ना वो अन्य ग्रंथों में से यहाँ बताते डायरेक्ट उसकी, यानी हम कहते ना रेफरेंसेस बता रहे, उद्धृत करना है ना रेफरेंस गाथा यहाँ लिख देना। हय हत्तिरहाण ही वा सेना वै मंति सेठि दंड वई शुद्ध खत्तिय ब्रह्मण वैसा तह मय हरा चेव। एक्चुअली आगे चलकर वो 18 होते हैं, आगे का भी पढ़ेंगे। गणराय मच्च तलवर पुरोहिया दपिया महामत्ता 18 सेनियो पयाइणा मेलिया होंती। अब नीचे इसका अर्थ 37 और 38 दोनों एक साथ अर्थ दिया है। घोड़ा, ऊपर हम शुरू किया था हय, हय यानी घोड़ा, हथी यानी हाथी, रहाण हिवा यानी रथ के अधिपति, सेना वही यानी सेनापति, मंत्री यानी मंत्री, सेठी यानी श्रेष्ठी, दंड वही यानी दंडपति, शुद्ध खत्य ब्रह्मण वही यानी क्षुद्र क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, फिर महयारा यानी महत्तर, गणराय यानी गणराज, अमच्य यानी अमात्य, तलवर यानी तलवार ही लिखा है पर उसका अर्थ होता है वो कोतवाल, ये शब्द आया था ना प्रवचन सार में तलवर से ऐसा कुछ, कोतवाल। पुरोहित यानी पुरोहित, दप्पिया महामत्ता यानी स्वाभिमानी महामात्य, एक शब्द है दोनों मिलकर यानी महामात्य का ही वो विशेषण है, और पैदल सेना, ये हाँ श्रेष्ठी, हाँ सेठ, हाँ यानी सेठिया, हाँ क्योंकि वो तो राजा उनको तो धन भी सप्लाई करते हैं, इसे बड़े बड़े श्रेष्ठी हो गया हुआ करते थे पहले तो। महामात्य महत्तर, महत्तर यानी वो महत्तर गणराज अमात्य, ये जो उनके अलग अलग मंत्रियों की स्टेट्स है कोई, जैसे हमें राज्य मंत्री होगा या कोई ऐसे, यानी मैं फॉर एग्जांपल कह रही, उसके अंडर फिर उसके अंडर ऐसे जो कुछ होते हैं अमात्य महामात्य वगैरह कहते हैं, ये 18 श्रेणियां होती है और इनका स्वामी है वो राजा, इनके यानी राजा में या राजा के साथ इतनी बातें होती हैं। या दूसरे तरह से भी इसका वर्णन किया है 39 में पढ़ेंगे हम, पुतनांग दंड नायक वर्णवनि भुगणिक महामात्राश्च मंत्री पुरोहित सेनान्यमात्य तलवर महत्तरा शिवश्रेण्यः, अथवा हाथी घोड़ा रथ और प्यादे ये चार सेना के अंग आपने सुना होगा चतुरंग सेना के साथ आए। चतुरंग सेना में वो हाथी की सेना होती है, घोड़े की होती है, रथ की होती है और प्यादे की होती है। अभी आजकल टीवी पर दिखाते हैं महाभारत रामायण वो जो कुछ चलता है तो उसमें ये ऐसी ऐसी सेनाएं दिखाते हैं, ये चतुरंग सेना कहलाती, ये चार हो गए। हाँ फिर दंडनायक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये दंडनायक बीच में अलग लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण, ये इन्हें ग्रुप बनाए उन्होंने, चार चतुरंग सेना चार वर्ण, बीच में एक दंडनायक लिया, फिर आगे क्या लिया वणिकपति, दंडनायक यानी हाँ वो दंड देने वाले में कोई वो उसका पद संभालने वाला है, हमारे जैसे अलग अलग खाते होते हैं ना, हाँ न्यायाधीश, फिर वणिकपति, वणिकों में भी जो कोई मुख्य होगा वो, हाँ यानी उनमें जो क्योंकि वैश्य में तो आ गए सब वणिक और ये उनका भी पति वणिकपति आ गया। गणराज एक गणतंत्र जिसको कहते हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे जो गण होते हैं उनके जो मुखिया हो गए वो गणराज, महामात्र मंत्री पुरोहित सेनापति अमात्य तलवर और महत्तर, यही बातें हैं मगर उन्होंने अलग पद्धति से उसका क्लासिफिकेशन किया है, ये 18 श्रेणियां होती है। अब ये तो राजा की बात इतनी हो गई, अब 40 जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे तो महाराज किसको कहना अधिराज किसको कहना उसकी बात आएगी उसमें। पंचशत नरपति नाम अधिराजो अधीश्वरो भवति लोके राजसहस्राधिपति प्रतीयते सौ महाराज। देखिए लोक में 500 राजाओं के अधिपति को अधिराज कहते हैं। अभी राजा किसको कहते हैं? तो 18 श्रेणियों का स्वामी वो राजा। ऐसे 500 राजाओं का जो मुख्य ये अधिपति होगा वो अधिराज, और 1000 राजाओं के अधिपति को महाराज कहते हैं। ये तो आसान है, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं है, आगे का पढ़ेंगे ऊपर। 2000 राजनाथो मनीषीर्भिर्वर्णते अर्धमण्डलिकः मण्डलिकश्च तथा स्यात् चतुःसहस्रावनीशपतिः। चतुःसहस्र अवनीशपति, अवनी यानी क्या? आपने सुना है पृथ्वी, आपने ये शब्द कहाँ सुना है? अवनीपाल कथा, ये विकथा के चार भेद थे ना, राज कथा जिसको कहते हैं उसकी को यहाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका में हमने आप नहीं देते, भी प्रमाद के भेदों में नहीं थे आप। हाँ हाँ, 37,500 भेद देखे थे हमने, आएंगे अभी एक 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 सब आने वाला है। प्रमाद छोड़कर आओगे तो प्रमाद के भेद सीख जाएंगे। ये अवनी अवनी कहते अवनीशपति यानी राजा। हाँ देख अभी नीचे उसका अर्थ पढ़ते हैं। पंडित जन 2000 राजाओं के स्वामी को अर्धमंडलिक कहते हैं और 4000 राजाओं के स्वामी को मंडलिक कहते हैं। हमने 500 से शुरुआत किया था, 500 वाला अधिराज, 1000 वाला महाराज, 2000 वाला अर्धमंडलिक और 4000 का स्वामी वो मंडलिक। अब आगे पढ़ेंगे 42 नंबर का। अष्टसहस्र महीपति नायक माहुर्बुधा महामंडलिकम षोडश राज सहस्रये विनम्यमानस त्रिखंड धरणीश। अभी उसके लिए धरणीश कहा, जिसको अवनीशपति कहा था यही वो धरणीश कहा, यानी पृथ्वीपति, पृथ्वी ऐसे वो अलग अलग नाम आते हैं राजाओं के लिए। बुध जन 8000 राजाओं के स्वामी को महामंडलिक कहते हैं, 4000 वालों को हमने मंडलिक कहा था, 8000 वालों का वो महामंडलिक हुए। और जिसे 16000 राजा नमस्कार करते हैं उसे तीन खंड पृथ्वी का अधिपति अर्थात नारायण कहते हैं, या अर्धचक्री भी कहते हैं इनको, चक्की अर्धचक्की ऐसा भी कहते हैं इनको ने। अब आगे 43 नंबर ऊपर पहले पढ़ेंगे। षटखंड भरतनाथम द्वात्रिंशत् धरणिपति सहस्राणाम दिव्य मनुष्यम विदुरिह भोगागारम सुचक्रधरम। नीचे इस लोक में 32,000 राजाओं से सेवित, अभी चक्रवर्ती का वर्णन चल रहा है, तो 32,000 राजा उनको नमस्कार करते, उनकी सेवा करते। नवनिधि आदि से प्राप्त होने वाले भोगों के भंडार, उत्तम चक्र रत्न को धारण करने वाले और भरत क्षेत्र के 6 खंड के अधिपति को दिव्य मनुष्य अर्थात चक्रवर्ती समझना चाहिए, उसको दिव्य मनुष्य कहा और उसी को चक्रवर्ती ऐसा दूसरा नाम। अब तीर्थंकर की बात आ जाएगी 44 में ऊपर। सकल भुवनैक नाथ तीर्थ करो वर्ण्यते मुनि वरिष्ठ विदुधवल चामराणाम तस्य स्याद्वै चतुष्षष्ठी। ये 64 चमर की बात है। विधु धवल चामराणाम, धवल चामर उसके ऊपर ढुलते हैं, कितने? चतुष्षष्ठी ने 64। नीचे उसका अर्थ क्या है देखो, विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान धवल, विधु धवल यानी चंद्रमा समान धवल, उसकी उपमा दी है ना वहाँ। देखो नीचे उसका पूरा अर्थ लिखा है, जिनके ऊपर चंद्रमा के समान धवल 64 चंवर ढूंढते हैं, ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामी को, यहाँ तो सकल भुवन के स्वामी लिए, तीन लोक के स्वामी श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं। अब 45 नंबर। तिथयर गण हरत्तम तहेव देविंद चक्कवट्टित्तम अन्नरिहमेव माई अभ्युदय सुहम वियाणाही। इसको अभ्युदय सुख कहा भी। देखो इस लोक में तीर्थंकरपना, गणधरपना, देवेंद्रपना, चक्रवर्तीपना और इसी प्रकार के अन्य अर्ह अर्थात पूज्य पदों को अभ्युदय सुख समझना चाहिए। ऐसे पूज्य पद प्राप्त होना ये पुण्य का फल है। तीर्थंकर पुण्य के फल से नहीं होते, परंतु तीर्थंकरों की जो विभूति है ये आता है ना प्रवचन सार में, पुण्य फला अरिहंता, तो उस पर ऐसा उंगली दिखा दिखा के वो क्या चर्चा करने वाले, वाद करने वाले क्या कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना पुण्य के फल में अरिहंत पद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। अरिहंतों को पुण्य का फल होता है ऐसा कहो तो चलेगा, परंतु पुण्य के कारण अरिहंत पद नहीं मिला है। अरिहंत पद है वो तो वितरागता के कारण, केवल ज्ञान के कारण मिला है ना। मुनि का जो पद है वहां इतना पुण्य, उनका उच्च प्रकार का पुण्य बनता है, वितरागता है और अल्प वहां पुण्य है, परंतु वो पुण्य उच्च कोटि का है तो उसके फल में ऐसी ऐसी बातें सहज रूप से मिलती है, परंतु वो पुण्य के कारण पुण्य के फल में वो अरिहंत हुए ऐसी बात नहीं है। वहां भी तीर्थंकरों को पुण्य का फल होता है ऐसा बताना था। ये तो फेवरेट चीज है ये जिसको वाद विवाद करना है ना उनके लिए।
ऐसी बात नहीं है, बात तो ये है कि राग में जिनको अधिक रुचि है तो राग का फल देखो कितना अच्छा है, अरहंत पद मिलता है। ऐसे जो सही अर्थ है उसको ट्विस्ट करके गलत अर्थ निकालते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, देखो राग से अरहंत पद मिलता है तो फिर आप बाद में मोक्ष मिलने में क्या हर्ज है, यानी राग से ही ये सारी बातें होती है ऐसा इनका मानना है, और इसके लिए फिर न समझते हुए भी वाद विवाद करते हैं। लेकिन हमने तो देखा है कि अपने स्वरूप में एकाग्र होने से ही सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, पूर्ण वितरागता, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये अंतरंग में स्थिरता की अपेक्षा से ये सारी बातें हैं। तो यहाँ तीर्थंकर पद भी जो केवल ज्ञान जो प्राप्त होता है वह कोई पुण्य का फल नहीं है, वह तो स्वरूप में स्थिरता का फल है। आगे
देखो, जिसको संयोगों में रुचि है, अब इतना सारा पढ़कर क्या था, अरे ऐसा अभ्युदय सुख रहता है, ऐसा मिलता है, चलो ये पुण्य से होता है, तो पुण्य की तो रुचि पहले से ही पड़ी हुई अनादि से, और इसमें ये पुण्य की रुचि है, ये पढ़कर भी वो उसी का पोषण करता है, अपने पुण्य की रुचि को ही पुष्ट करता है। हाँ, जैसे अभी खेत में हम कोई अनाज उगाते हैं, फसल लेते हैं, तो उसके साथ घास फूस ऐसे अन्य भी बहुत सी चीजें उग जाती है और उसका कुछ फायदा भी होता है, परंतु कौन सी कितनी फसल मिलेगी, या फसल की बात नहीं करेंगे, कितना घास उगेगा, चलो वो हम फसल लगाएंगे, ऐसा कोई सोचता है क्या? उसकी दृष्टि में तो वो जो धान लगाया है वहाँ उसी की महत्ता है। वैसे अभी निश्रेय सुख के साथ, अतीन्द्रिय सुख के साथ अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है, परंतु सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ है, अपने शुद्धात्मा पर है, और वो निश्रेय सुख का वो भोगने वाला है, उसका अभिलाषी है, परंतु ये अभ्युदय सुख की कोई वहाँ चाह नहीं है, उसको वो भला नहीं मानता है, फिर भी उसके मिल जाते हैं। अब अरहंत और सिद्धों के अतीन्द्रिय सुख को मिला 45 के आगे नैश्रेय सुख कहते हैं, कहा भी है, यानी जो अनंत सुख है, मोक्ष सुख है, उसको यहाँ नैश्रेय सुख कहा। हाँ से चलिए वो पढ़ रही, कहा भी है वो, इन्होंने प्रवचन सार की बात यहाँ लिखी है, प्रवचन सार के पहले अधिकार में बात आई थी, हमने इसको पढ़ा था। देखो, अधिशयमादसमुत्थम विषयादीदम अणोवमंत्रम अवुच्छिन्नम च सुहम सुद्धुवजोगो यसिद्धानम। देखो कैसा है ये, अतिशय रूप, अतिशय माद यानी अतिशय रूप, अतिशय ने विशेषता सहित, हम कहते ना ये अतिशय है, सातिशय है या अतिशय है, भगवान के अतिशय, केवल ज्ञान के इतने अतिशय, जन्म के इतने अतिशय, यानी वो जो विशेष बातें होती है, विशेषता उसमें जो होती है उसको कहते हैं अतिशय। तो अतिशय रूप और कैसा है, आद समुत्थम, आद यानी आत्मा, आद समुत्थम यानी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, किसी बाह्य चीजों में से ये सुख उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आत्मोत्थ भी कहते हैं। हम सिद्धों की बात पहले पढ़ते हैं ना मंगलाचरण में, उसमें बात आई थी एक नंबर पर, पेज पर हमने देखा है, अपथ्य सोख मणवज्जम, अपथ्य सोख, अपथ्य ने आत्मा में से उत्पन्न हुआ है वो। मंगलाचरण हम रोज कहते हैं ना, उसमें है। तो ये आद समुत्थम यानी आत्मा से उत्पन्न हुआ है, विषयाद इदम यानी विषयों से रहित यानी विषय विषयातीत है, किसी विषयों से ये सुख प्राप्त नहीं है, अनुपम है, अनंत है और अवच्छिन्नम यानी विच्छेद रहित है, यानी बीच में ही वो चला जाए, क्योंकि अन्य सुख जो है साता वेदनी आदि के उदय में होते हैं, तो उसके उदय की हीनाधिकता हो जाए तो सुख भी यहाँ कम ज़्यादा हो जाए। अभी हमारे पास सभी विषय है, रुपए पैसे बहुत है, पर बीमार पड़ गए कितना सुख देते हैं वो विषय, थाली भर के अच्छा पकवान का भोजन है और हमें कोई ऐसी तकलीफ है कि खाने का मन भी नहीं, ये वो अनाज की तरफ देखने को भी मन नहीं होता, तो कितना सुख देता है वो ये। परंतु ये निश्रेय सुख कैसे, विच्छेद रहित है तथा शुद्धोपयोग सिद्धों को होता है, ये शुद्धोपयोग यानी केवल ज्ञान की बात चल रही, यहाँ बात चल रही है अभी नियम सार में। हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन को शुद्धोपयोग कहा था वहाँ। अब आगे पढ़ेंगे 47 पहले पढ़ के फिर नीचे आते हैं भावी। हाँ कोई प्रश्न है? हाँ हाँ वैसे वो अर्ध चक्री है और ये चक्री है। जम के सवस्व बलम तम दुगुणम, जैसे वो पुनी पुनी या बहुरी बहुरी वैसा वो कोई होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए कोई उसमें। जम केशवस्य उबलम तम दुगुणम यानी जो हम कहते ना जो केशव का बल है वो दुगुणा होता है, ऐसे जो और वो ऐसा। हाँ हाँ वो है ना जो और वो ऐसे हम कहते ना। हाँ हाँ वो विशेषण ये अब कहाँ है, हम 47 पढ़ेंगे। भावी सिद्धन्दानम दिनयर करणिम मलम हवैणानम शिशिरयर कर सरिच्छम हवैचरितम सवसचित्तम। भावी सिद्धन्तानम, सिद्धन्त यानी सिद्धांत, जिन्होंने सिद्धांत का उत्तम प्रकार से अभ्यास किया है ऐसे पुरुषों का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान, सुदीर्घ चाहिए वहाँ, सूर्य की किरणों के समान निर्मल होता है। दिनयर कर निम्मलम यानी सूर्य के किरणों के समान निर्मल होता है, और जिसमें अपने चित्त को स्वाधीन कर लिया है ऐसा चंद्रमा की किरणों के समान चारित्र होता है। शिशिर यर कर सरिच्छम यानी उनका चारित्र भी चंद्रमा की किरणों के समान होता है, ऐसी बात है। यानी जो सिद्धांत का उत्तम अभ्यास कर लेते हैं उनका ज्ञान तो सूर्य के किरणों के समान निर्मल होता है, और चारित्र यानी स्थिरता जो है वो भी चंद्रमा के किरणों के समान हो जाते हैं। अब 48 पढ़ेंगे। मेरुव निपकंपम नठठमलम तिमूढ़ उम्मुक्कम संबंधन सन मनुवमम उपजयि पवयन भाषा। मैंने प्रवचन के अभ्यास से, पवयन भाषा है ना, क्या क्या होता है तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि प्रवचन अर्थात परमागम के अभ्यास से मेरु के समान निष्कंप मेरु व निपकंपम आठ मल रहित नठठ मलम और तीन मूर्ताओं से रहित तिमूढ़ उम्मुक्कम। ऐसा क्या होता है? अनुपम सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तीन मूर्ता याद है कौन कौन सी जो सम्यक दर्शन में नहीं होती है? देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता भी कहते हैं उसको। ये तीन मूर्ता से रहित सम्यक दर्शन होता है, यानी देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय होता है उनको, तो ये सम्यक दृष्टि। और कैसे? आठ मलों से रहित, यानी आठ गुणों से युक्त है, निशंकित आदि जो आठ अंग है, अभी उसमें शंका कांक्षा उसको ये दोष लेना, उसको मल लेना, और उससे रहित है और तीन मूर्ताओं से रहित है। ये प्रवचन ने परमागम के अभ्यास से ऐसा सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ऐसी बात कही उन्होंने, क्योंकि हमारी श्रद्धा दृढ़तर होती जाती है, ज्ञान निर्मल होता है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। अब 49 तत्तोचेव सुहायम सयलायम देव मणुयखयराणम उम्मूली अट्ठकम्मम पुडसिद्ध सुहम पिपवयनादो। उस प्रवचन के अभ्यास से ही देव मनुष्य और विद्याधर, ये विद्याधरों के लिए कौन सा शब्द आया भाई? हाँ, खयर यानी खचर, ख यानी आकाश, और आकाश में जो चरते वो खचर कहो, खेचर भी कहेंगे, वो खेचर घोड़े को गधे को कहते, वो बात नहीं है, वो भी क्यों कहते, वो तो बहुत जोर से दौड़ता है ना, आपको मालूम है खेचर नाम का प्राणी? के नहीं मालूम? घोड़ा और गधा का मिश्रण है वो खेचर, तो ये देवों को भी खेचर कहेंगे, खचर भी कहते हैं या खेचर, खेने खग यानी आकाश में जो चरते हैं, विचरण करते हैं। ख ग किसको कहते हैं? पक्षी, आकाश में जो ग यानी गमन करते, ये शब्द ऐसे ही तैयार हुए हैं, ख्याल है? देखो क्या होता है, उक्त प्रवचन के अभ्यास से ही देव मनुष्य और विद्याधरों के सर्व सुख प्राप्त होते हैं, तथा आठ कर्मों के उन्मूलित हो जाने के बाद प्राप्त होने वाला विशद सिद्ध सुख भी प्रवचन के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। यानी प्रवचन के अभ्यास से इतनी सारी बातें होती है, क्योंकि प्रवचन के अभ्यास से सम्य दर्शन होता है, चारित्र की प्राप्ति होती है, और उस पूरा नहीं हुआ तब तक साथ में वो जो शुभराग होता है उसके कारण पुण्य प्रकृतियाँ ऐसी बनती है उच्च प्रकार की, कि उसके कारण ये अभ्युदय सुख सहज मिलता है, और निश्रेय सुख जो सच्चा सुख है, सिद्धों का सुख, आठ कर्मों का खिर जाना, उसके बाद होने वाला जो विशद विशद यानी स्पष्ट है, वो भी प्रवचन के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। ये 49 हो गया, अभी 50 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। जियमो हिंदन जलनो अन्नान तमंधयार दिनरयो कम्ममल कलस पुसो जिनवयन मिवो वही सुहयो। वह जिनागम जीव के मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है, जिसको जिनागम कहा है, वो कैसा है? मोहिंधन जलनो, मोह रूपी ईंधन को जलाने में अग्नि के समान है, और अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। ऊपर लिखा ना, अन्नान तम, अन्नान यानी अज्ञान, तम यानी अंधकार, अन्नान तम अंधयार दिन यरो, दिन यर यानी दिनकर, दिनकर यानी सूर्य। ये क्या कहते हैं? अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। कम्म मतलब कलुष पुसो, कर्म मतलब अर्थात द्रव्य कर्म, और कर्म कलुष अर्थात भाव कर्म को मार्जन करने वाला समुद्र के समान है। मार्जन करना यानी नष्ट करना या निकाल देना, परिमार्जन कहते ना, उसका परिमार्जन किया, हमारे शब्द तो ऐसे ही संस्कृत में से बने हैं। और परम सुभग है, कौन किसकी बात चल रही है? परम सुभग किसको कहा? जिनागम को। अब 50-51 अन्नानतिमिर हरणम सुभविय हियारविंद जोहणयम् उज्जोयै सयलवहम् सिद्धांत दिवायरम् भजः। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने वाले अन्नान तिमिर हरणम, फिर भव्य जीवों के हृदय रूपी कमल को विकसित करने वाले सुभविय हियार अविंद, अरविंद ने कमल, हिय अरविंद जोहणयम यानी उसको विकसित करने वाले, और संपूर्ण जीवों के लिए पथ अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले उज्जोई यानी उद्योदित करते हैं यानी प्रकाशित करते हैं। क्या? सयल वहम सिद्धांत दिवायरम भजह, कि मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ऐसे सिद्धांत रूपी दिवाकरण सूर्य को भजो यानी ये प्रवचन का आगम का अभ्यास करो, उसको भजना यानी ये जैसे हम बचपन में करते थे, वो तो सरस्वती की आरती करेंगे और किस किस की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, पर उसमें क्या वो कुछ पता नहीं था, वो तो ऐसी पद्धति थी। शाम को आरती वगैरह जाते थे, भगवान की आरती हुई, फिर सरस्वती की आरती करेंगे और किस किस की करेंगे, सब कुछ चलता था, परंतु उसमें क्या है इसके इस बात का कुछ पता नहीं था। हाँ, उज्जोय सयल वहम सिद्धांत दिवायरम भज, उसके रेफरेंसेस नीचे सब दिए हैं। अभी 51 में जो 4 नंबर लिखा है तमे ताप्रतोनोत्सहा, ये अन्य अन्य प्रतियों में क्या आता है क्या नहीं है उसकी, इसकी हमने ज्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि वो पूरा प्राकृत है ना, वो फिर किसी को उसमें रुचि होती है नहीं होती है, समझ में आता है नहीं आता, मगर आप जरूर पढ़ना जिसको रुचि है, वो फुट नोट्स में बहुत सारा माल है, जहाँ पर कुछ विशिष्ट है वो मैं भी स्वयं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, परंतु पूरा ही पूरा पढ़ना फिर वो बहुत टेंशन वाला हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो ऊपर भी संस्कृत में से पढ़ना चाहिए, ये जो मूल टीका है ना धवला टीका, संस्कृत और प्राकृत का मिक्सचर है, वहाँ कहीं संस्कृत यूज किया कहीं प्राकृत यूज किया, जैसे उनको भाव होते होंगे तो चलो प्राकृत में बोले, कभी जैसे हम हिंदी बोलते हैं बीच में गुजराती बोलेंगे इंग्लिश ही बोलेंगे, वैसे बीच बीच में प्राकृत में भी लिखा है, बीच बीच में संस्कृत भी लिखा है। तो ये हेतु की बात, निमित्त और हेतु की बात चल रही है यहाँ। अब आगे बता रहे हैं 61 पेज पर, अथवा जिनपालित इस श्रुतावतार के निमित्त है, निमित्त और हेतु दोनों बता रहे, और उसका हेतु मोक्ष है। ग्रंथ लिखने का हेतु क्या है? मोक्ष, मुनि ने लिखा है वीरसेन आचार्य ने, तो उनका हेतु कौन सा होगा, इन्हें फल क्या मिलेगा? मोक्ष। और किसके निमित्त से लिखा है? तो जिनपालित, जिनपालित यानी क्या आपको मालूम है देवेंद्र भाई? अरे बाप रे, जिनपालित उनके शिष्य का नाम है, भूतबली आचार्य के शिष्य का नाम जिनपालित है, देखो आपको देखना है। प्रस्तावना निकालना 16 पेज, आपने प्रस्तावना पढ़ी नहीं इसका अर्थ है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हम याद कराएंगे ना आपको, नहीं याद तो कोई बात नहीं है, हर एक को याद होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखो 16 पेज निकालना, हाँ वो पूर्व का, ये मंगलाचरण के पहले जो पेजेस है उसमें 16 नंबर का पेज देखो, उसमें नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें नाम है, हेडिंग ही दिया है, पुष्पदंत और जिनपालित लिखा है ना, मिला भाई आपको? देखो हम इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत ग्रंथ में पुष्पदंत का संपर्क एक और व्यक्ति से बतलाया गया है, एक और ने, एक और चाहिए उसमें, अंकुलेश्वर में चातुर्मास समाप्त करके जब वे निकले, यानी धर्मसेनाचार्य ने भूत बलि और पुष्पदंतों को पूर्ण पढ़ाया, उनको उपदेश दिया। जब उपदेश दिया तभी ग्रंथ की रचना नहीं की, बाद में उन्होंने लिखी थी, ख्याल है ना। हाँ, तो अंकलेश्वर में उन्होंने चातुर्मास किया और वहां से निकले तब उन्हें जिनपालित मिल गए और उनके साथ वे वनवास देश को चले गए। अभी तब के नाम है वो सब देशों के नाम, जिनपालित शिष्य थे उनके शिष्य। अब ये बीच की लाइनें छोड़ दिए, जे सब दो कोई इनसे शब्द का क्या उसका अर्थ है वो उसकी बात नहीं है। अभी यहाँ 17 पेज पर आना, सेकंड लाइन, इन्हें वनवास देश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जिनपालित को दीक्षा दी और विशदी सूत्रों की रचना करके उन्हें पढ़ाया। ये जो 20 प्ररूपणाएं है ना, 20 सूत्र, उनकी रचना करके उनको पढ़ाया, जिनपालित को पढ़ाया, और फिर उन्हें भूतबलि के पास भेज दिया। पुष्पदंत तो उम्र में ज्यादा थे, उनको ऐसा पता अंदर से हुआ कि अभी उनकी आयु कुछ कम रह गई है शेष, तो जिनपालित को सभी वो पढ़ा दिया उन्होंने कि कहीं उसका नाश नहीं हो, क्योंकि जो चला कोई जानता है तो उसके साथ वो ज्ञान भी चला गया। तो उन्होंने जिनपालित को मुनि दीक्षा दी, उनको ये 20 सूत्र, खाली 20 सूत्र ने अकेले 20 गाथा है नहीं, 20 सूत्र ने 20 प्ररूपणा सारी, अभी जो हम पढ़ेंगे पूरे जीवस्थान वाली, तो वो सब उनको पढ़ा दिया और उन्होंने उसको भूतबलि के पास भेज दिया। भूतबलि ने उन्हें अल्पायु जान, उन्होंने जान लिया कि उनकी ये अल्पायु होगी, महाकर्म प्रकृति पाहुड़ के विच्छेद भय से द्रव्य प्रमाण से लगाकर आगे की ग्रंथ रचना की। यानी भूत बलि और पुष्पदंत तो दोनों ने मिलकर रचना की ऐसा जो कहते हैं, तो 20 प्ररूपणा जो है तो वो तो भूत बलि ने पुष्पदंत ने रचना की, और जो रिमेनिंग पार्ट था द्रव्य प्रमाण से आगे, हाँ आगे वाला द्रवानुनु, वो उसकी रचना इन्होंने की स्वयं भूत बलि ने। इस प्रकार पुष्पदंत और भूतबलि दोनों इस सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता है और जिनपालित उस रचना के निमित्त कारण हुए। ये निमित्त की बात आई, निमित्त और हेतु की बात है ना, किसके निमित्त से हुए, तो जिनपालित को पढ़ाने के लिए वहाँ उस निमित्त से हुए। हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ी थी तो चामुंडराय के निमित्त से वो नेमिचंद्र आचार्य ने उसकी रचना की थी, ऐसा वहाँ आया था। आगे भी ये जिनपालित का रेफरेंस है, अभी खाली बता देती हूँ, देखो 72 पेज में है। नीचे के पैराग्राफ में तीसरी लाइन से पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिटेल तो हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं। देखो 72 पेज, वो नीचे का पैराग्राफ तीसरी लाइन, वर्षा योग को समाप्त कर, यानी चातुर्मास बिता कर, अभी पहले बात आई थी ना, और जिनपालित को देखकर उसके साथ पुष्पदंत आचार्य तो वनवासी देश को चले गए और भूतबलि भट्टारक को आचार्य को तमिल देश को चले गए। मिला आपको अश्विन भाई? हाँ, 72 पेज पर चल। तदनंतर पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर 72 पेज, ये प्रस्तावना वाला पेज नहीं चल रहा है, अपना मूल विषय चल रहा है अपना। हाँ, ये इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। हाँ, नीचे के पैराग्राफ में अभी पांचवी लाइन पर आ गए, जिनपालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्र बनाकर और जिनपालित को पढ़ाकर अनंतर उन्हें भूतबलि आचार्य के पास भेजा है ना। तदनंतर जिन्होंने जिनपालित के पास 20 प्ररूपणा अंतर्गत सत प्ररूपणा के सूत्र देखे हैं और पुष्पदंत आचार्य अल्पायु है, इस प्रकार जिन्होंने जिनपालित से जान लिया है, जिनपालित से उन्होंने जो 20 प्ररूपणा उन्होंने रचकर भेजी थी उसको भी जान लिया और पुष्पदंत आचार्य की अभी आयु अल्प रही गई उसको भी जान लिया, उनको तो ज्ञान था आगे वाले प्ररूपणाओं का, परंतु अभी वे तो अभी अल्पायु है, तो आगे की प्ररूपणा अगर नहीं लिखेंगे नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे रह जाएगी। इसलिए आगे का जो पूर्ण करने का कार्य है वो इन्होंने बुध बलि ने किया। अतएव महाकर्म प्रकृति प्रावृत का विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको, ऐसे भगवान भूत बलि ने द्रव्य प्रमाणानुगम को आदि लेकर ग्रंथ रचना की। ये जो विशिष्ट टिपिकल जो विषय यानी पर्टिकुलर विषय है उसके आगे की जो रचना है ये भूत बलि ने की, यानी पहले 20 प्ररूपणा है वो पुष्पदंत आचार्य ने रचना है, तो उसमें निमित्त वो जिन पालित है, ये निमित्त पर से ये हमने हमारी बात चली थी सारी। 61 पेज पर आना वापस, अभी अपना जो विषय चल रहा है वहां का 61 पेज है। तो इस श्रुताव का तार के निमित्त, कौन से श्रुताव तार की बात चल रही है, धवलाकी के षटखंडागम की? हाँ, जिनपालित को किसने सिखाया था, धवलाकार ने क्या षटखंडागम कार ने? क्या है ना, षटखंडागम की रचना किसके निमित्त से हुई थी, जिनपालित के निमित्त। पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को यह शास्त्र पढ़ाया था, कौन सा वाला, षटखंडागम, वो 20 प्ररूपणाएं सिखाकर फिर बुध बलि के पास भेजा और उन्होंने रिमेनिंग शास्त्र पूर्ण किया, बराबर। तो ये षटखंडागम के निमित्त, ये षटखंडागम की अभी चल रही है बातें,
जैसा हम अपने में लगाए तो ये जो कोई 14-15 सेट लाए उसमें निमित्त आप है, एसटी से यहाँ तक आपने लाया, समझ में आया कि नहीं, तो आपके निमित्त से हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो जिनपालित इस श्रुतावतार के निमित्त है, अभी हम यानी कंफर्म हो गए ना अपने जिनपालित का अर्थ वगैरह सब, और उसका हेतु मोक्ष है, अर्थात मोक्ष के हेतु जिनपालित के निमित्त से इस श्रुत का अवतार हुआ है। मुनियों का तो एक ही प्रयोजन है ना मोक्ष का, उनको तो कोई अन्य अभ्युदय सुख की चाह है ही नहीं है, उसका फल क्या मिलने वाला है कालांतर से, अभी अभी जब लिखा तभी तो कोई मोक्ष होने वाला नहीं था, फिर भी बीच में एक दो भव तो उसकी कोई गणतरी नहीं है, तो उसका फल है मोक्ष। यहाँ पर निमित्त और हेतु के कथन करने से पाठक जनों को हर्ष का उत्पन्न करना ही प्रयोजन है। देखो इसका निमित्त और हेतु क्यों बताना, तो पढ़ने वालों को हर्ष उत्पन्न हो जाए, इसलिए निमित्त भी बताया और वो उसका हेतु भी बताया। अब परिमाण का व्याख्यान करते हैं, परिमाण यानी प्रमाण, कितने श्लोक प्रमाण होगा ग्रंथ उसकी बात है यहाँ। अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है। क्या कहना चाहते हैं, अक्षर एक एक जो अक्षर है उसको हम अक्षर कहेंगे, जैसे अ आ ई वो तो स्वर होंगे और व्यंजन यानी क ख ग घ आदि वो व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर आगे विषय आएगा ज्ञान मार्गणा में, तो हमने वो 64 अक्षर देखे थे और उसके जो कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस हो जाएंगे, जैसे हम जोड़ाक्षर जिसको कहते हैं, तो दो अक्षरों का एक जोड़ाक्षर या तीन अक्षरों का या चार अक्षरों का 64 अक्षरों तक जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस ऐसे सब करेंगे अलग अलग, तो उसके अलग कितने भेद होते हैं, 31 - 1, 31 किसको कहना, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65, उसमें 65,536 आते हैं 1, 2, 3 चौथे स्थान पर। 65 का वर्ग उसको कहते हैं बादाल, दिस इज 10 डिजिट, और बादाल का वर्ग छठे स्थान पर होता है 31, इस 20 डिजिट संख्या है, उसमें से 1 माइनस करो, इतने अपुनरुक्त अक्षर। अपुनरुक्त अक्षर का अर्थ हम समझेंगे जरा, जैसे इंग्लिश की कोई भी नॉवेल है, कोई भी बड़ा लिटरेचर है, कुछ कितने में बड़े में बड़ा बुक है, तो उसमें लेटर्स कितने होंगे, 26, अल्फाबेट से 26 ही है उसका, कोई भी अभी ए अल्फाबेट भले हजारों बार आवे उसको गिनना एक बार, वैसे ये जो हमने 64 के भंग देखे थे, इतने जो अक्षरों की संख्या देखी, तो अपुनरुक्त यानी कितनी भी बार भी आवे हम इसको एक बार गिनेंगे, ऐसे अक्षर कितने हैं, तो इतने हैं, इकट्ठी माइनस वन। ये पूरे श्रुत की बात करें, अभी उतने तो इसमें तो है ही नहीं है। अब ऐसे अक्षरों के समूह को पद कहते हैं, हमारी भाषा में कहने हैं तो जिसको हम वर्ड कहेंगे, वाक्य कहेंगे, वो पद में आएंगे। चौसठ अक्षरों का एक अक्षर हुआ, वो संयोगी भंग कहते हैं। अभी ऐसे हम कहें ना विंध्य, विंध्य शब्द में वो ध्य में कितने न आधा द आधा, यह को भी आधा लेना पहले, फिर उसमें अ आ मिलाना, विंध्याद्री ऐसा कुछ कहना है तो उसमें कितने एक दो तीन चार, ऐसे इतने चार संयोगी हुए ना, ऐसे संयोग चौसठ संयोगी वाला एक अक्षर हो सकता है एक अक्षर। हाँ अभी तो तीन ही तीन चार ही बताया, एक दो तीन चार, नहीं नहीं प्लस प्लस किया है मैंने, ये सब में प्लस प्लस, यानी न आधा प्लस द आधा प्लस य भी आधा लेना प्लस आ लेना।
हाँ हाँ
ये जोड़ाक्षर जिसको हम कहते हैं, तो ये अक्षर हुए, अभी तो हम इतना ही ले लेंगे। अक्षर है, अक्षरों के समूह को पद कहेंगे, जहाँ अनेक पदों के समूह उसको हम संघात कहेंगे। इसकी डेफिनेशन बहुत अलग है और उसमें बहुत पद भी, जो ओरिजिनल जो द्वादश अंग है उसके जो पद है, उस एक एक पद में जो अपुनरुक्त अक्षर कहलाते हैं उसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो यहाँ जो पद कह रहे हैं, जैसे हम कोई वाक्य कहते हैं कि राम ने आम खाया, इसको भी हम पद कहेंगे, राम को भी पद कह सकते हैं, अर्थ पद कहते हैं उसको, उसमें से कुछ हमको अर्थ प्रतीत होता है उसको अर्थ पद कहते हैं। अब हमारी जो गाथाएं वगैरह है ना, नमस् समय साराय स्वानुभूति चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे, हमने उसके चार भेद किए, नमः समय साराय, नमः समय साराय, कितने आए अक्षर उसमें, आठ आए, तो आठ आठ अक्षरों के चार पद है इसमें, उसके फिक्स संख्या होती है। कोई भी छंद हम लेते हैं यहाँ तो उसकी अक्षरों की फिक्स संख्या होती है, उसको कहते हैं प्रमाण पद, यानी उन प्रमाणों का पद यानी संख्या उसकी निश्चित होती है। अब हम जो अभी शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें तो ऐसी आर्या या छंद, ये हरिगीत, ये जो हम श्लोक गाथाएं पढ़ते हैं उसको तो प्रमाण पद वाले हैं, निश्चित संख्या वाले श्लोक है। ओरिजिनल जो 12 अंगों की रचना थी उसमें बहुत बड़े बड़े मध्यम पद कहते थे उसको, एक पद में अक्षरों की संख्या डॉक्टर को याद थी, हाँ डॉक्टरों को याद है, 1634 करोड़ 83 लाख 7000 नहीं 783 88 ऐसा कुछ है, 7088 ऐसी कोई बात है। तो इसके इतने का एक एक पद, और ऐसे कितने कितने पद होते थे, यानी बहुत बड़ी यानी वो संख्या है। हाँ तो वो आएगा हमारा जब आना है ज्ञान मार्गना की बात, और बिल्कुल समझेगा, ऐसी कोई नहीं कि इतनी बड़ी बात है हमें कैसी समझेगी, सब कुछ समझ में आएगा कि हम वी आर गोइंग स्लोली, जैसे शिखर जी पर्वत चढ़ते हैं एकदम टॉप पर देखते तो हमें चक्कर आता है, वो चढ़ने का मन नहीं होता, अपने पैर के नीचे देख के चलना, एक 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 पैर रख के तो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो अक्षर, अक्षरों के समूह को पद कहेंगे, पदों के समूह को संघात कहेंगे, उसमें कितने पदों का एक संघात होता है, कितने संघातों का एक प्रतिपत्ति होती है, ये सारा गणित है उसका, और इतने प्रतियोगों का एक अनुयोग होता है, फिर चार अनुयोगों का वो ऐसा, उसकी बात आएगी आगे। तो उसकी अपेक्षा श्रुत का प्रमाण जो है, परिमाण जो है वो संख्यात है, उसमें संख्यात है क्योंकि वी कैन काउंट इट, काउंटेबल फिगर है, और अर्थ अर्थात तदवाच्य विषय की अपेक्षा अनंत है, वो शब्द तो संख्यात है परंतु जिसको बताते हैं वो जो बात है वो अनंत है। अभी केवल ज्ञान बता दिया खाली शब्द ने, तो केवल ज्ञान में कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, तो अनंत है। वो भाव की अपेक्षा उसकी देखेंगे वो अनंत है। या जीवों के परिणाम अलग अलग प्रकार के, उसको बताने वाले जो कोई शब्द है तो शब्द तो सीमित है, परंतु उसमें जो वो बताना चाहते हैं वो बातें अनंत है। शब्द तो सीमित है, जीव द्रव्य कितने बताए, जीव द्रव्य अनंत जीव द्रव्य होते हैं, ख्याल है ना। तो वाच्य विषय की अपेक्षा अनंत है, पद की अपेक्षा 18,000 प्रमाण है। ये पद यानी यहाँ वाक्य कहो या श्लोक कहो जो कुछ है, ये किसकी बात चल रही है? षटखंडागम कितना बड़ा है, तो 18,000 पद प्रमाण है, 18,000 उसके गाथाएं या जो कोई पद होंगे उसमें। अभी ये क्यों बताना है, प्रमाण क्यों बताना, ऊपर निमित्त और हेतु क्यों बताया? पाठक जनों को हर्ष हो, इसलिए पढ़ने वालों को, पाठक जन है ने पढ़ने वाले। अब यहाँ शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए पढ़ाने वाले के, अरे वाह 18,000 प्रमाण ग्रंथ है और क्या है, मति संबंधी व्याकुलता दूर करने के लिए। जब हम ग्रंथ लिखते तो पहले देखते पीछे कितने पेज वाला है ये पहला वाक्य क्योंकि ये हमारी मति संबंधी व्याकुलता है, ये जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। तो 16 भाग है तो इसके अंदर इतना है तो कितने दिन में पूरा होगा, क्या होगा, ये उस संबंधी हमारे विचार चलते हैं हाँ, तो बाकी सब हिसाब किताब हमारा चलता रहता है कितने दिन लगेंगे क्या होगा। ये तो मति संबंधी जो व्याकुलता है वो दूर करने के लिए प्रमाण पहले ही बता देते हैं और उससे हर्ष भी होता है ना, अरे इतना बढ़िया इतना महान ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हर्ष होता है उसमें। अब पांचवें स्थान पर ग्रंथ का नाम, पहली चार बातें हमने क्या क्या देखी थी, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, अब नाम और कर्ता। तो ग्रंथ का नाम, इस शास्त्र का नाम जीव स्थान है, जीव स्थान का ना उन्होंने कारण, कारण का व्याख्यान पहले कर आए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो इसमें जीव संबंधी वर्णन है। नाम पढ़ने के कुछ हमने कारण देखे थे, कोई भी चीज के नाम होते हैं तो उसमें कारण होते हैं, चार कारण हमने देखे थे, आपने लिखा भी है आपके चार्ट में। हाँ हाँ, द्रव्य, जाति, पहले में जाति, जैसे जाति अपेक्षा भी नाम पड़ते हैं, जैसे हम क्या कहेंगे ये जैन है, जाति अपेक्षा नाम है, या ये कौन से एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, उसको भी जाति कहते हैं, या हम कहते हैं ना जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, तो जीव जाति, पुद्गल जाति, ये भी जाति अलग अलग है, उसको जाति अपेक्षा नाम पड़ते हैं। दूसरा द्रव्य अपेक्षा नाम पड़ता है, द्रव्य यानी वो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य उसकी बात नहीं है, द्रव्य में दो भेद किए थे, एक संयोगी और एक समवाय वाला। संयोगी यानी अभी मैंने पेंसिल पकड़ी है तो पेंसिल वाले ऐसा कहेंगे, हमने उस दिन वो केले वाले का उदाहरण है, वो केले वाला है, उसके संयोग में क्या है, या दंडी यानी दंड वाला यानी लाठी वाला, उस द्रव्य की अपेक्षा उसका नाम पड़ा, चश्मे वाला कुछ भी। और दूसरा कौन सा होता है, समवाय यानी उसी में गर्भित है, उसके शरीर के अंतर्गत है, जैसे किसी का पाय अधू है तो हम क्या कहते हैं उसको, लंगड़ा या अंधा, काना, जो कुछ ये नाम कैसे पड़े, तो वो तो उसके अंगभूत में ही समाहित है ना, कोई रोगी होगा ये तो रोगी है ऐसा कहेंगे, तो ये द्रव्य अपेक्षा नाम पड़ा। फिर गुण अपेक्षा नाम है, ये काला है, ये लाल है ऐसा, ये रक्त नाम कैसा है, रुधिर लाल होता है तो उसको रक्त कहना दे, ये नाम यानी क्या, गुण अपेक्षा उसका नाम हो गया। और फिर क्रिया, क्रिया अपेक्षा ने ये नर्तक है, ये गायक है, उसकी गायन की क्रिया को देखकर उसको गायक कहते हैं, वो नृत्य करता है उसको नर्तक कहते हैं, इस तरह से ये नाम पड़ते हैं। अब ये उसके नाम के कारण की बात हमने पहले देखी थी, ऐसा यहाँ कहना है, इस प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। व्याख्यान करना है ना, नाम इस तरह से अलग अलग होते हैं, और यहाँ जीव का वर्णन होगा तो इस ग्रंथ का नाम भी जीवस्थान ऐसा रखा है। अब कर्ता के दो भेद है, छठा पॉइंट अब शुरू हो जाता है, ग्रंथ का कर्ता कौन है। तो ग्रंथ के कर्ता उसमें दो भेद, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। अर्थकर्ता ने मूल उपदेश जिसने दिया है उसको हम अर्थकर्ता कहेंगे, और ग्रंथों को जो शब्दों में गुंथित किया उसको ग्रंथकर्ता कहेंगे। यानी मूल कर्ता तो महावीर भगवान हो गया अभी इस महावीर के शासन में, और ग्रंथ के मूल कर्ता भी यानी उसकी रचना करना रहे तो गणधर हो गए, और फिर वो परंपरा सब आचार्यों की बताएंगे। और अभी ये ग्रंथ किसने लिखा, षटखंडागम, तो फिर उसमें कहेंगे वो दर्शन आचार्य ने उपदेश दिया, भूतबली ने फिर लिखा, फिर उन्होंने वो जयपालित के द्वारा वो ये पुष्पदंत ने लिखा पहला जीवस्थान, और उसको भूतबली आचार्य ने पूर्ण किया। ये सब ग्रंथ के कर्ता में आ जाएंगे। तो अभी उसके दो कर्ता, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। इनमें से अर्थकर्ता का द्रव्यादि चार के द्वारा निरूपण किया जाता है, यानी द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। उनमें से पहले द्रव्यार्थी, ये क्या इतने भेद प्रभेद होते हैं ना, हम कौन से भेद में कहां गए वो, इसलिए फिर पहले का सब मैं याद कराती हूँ कि कहां से निकले हम, किसकी बात चल रही है, है? तो क्या कहते हैं, उनमें से पहले द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं, यानी कौन है अर्थकर्ता, एक्चुअली कौन सा जीव है जिन्होंने ये उपदेश दिया है उसकी बात है, यानी यहाँ महावीर भगवान की बात करेंगे। तो ये महावीर भगवान कैसे है पहले उनका लंबा चौड़ा वर्णन करेंगे, और अंतिम लाइन में लिखेंगे ऐसे महावीर भगवान इसके ग्रंथ के मूल अर्थकर्ता है। तब यहाँ महावीर की बात हो रही है, यानी अरिहंतों की या तीर्थंकरों की बात बता रहे। क्या कहते हैं, पसीना रज अर्थात बाह्य कारणों से शरीर में उत्पन्न हुआ मल, यानी ये मल रहित होते हैं तो कौन कौन से मल, तो बाह्य कारणों से जो शरीर में उत्पन्न हुआ है ऐसा मल, और दूसरा मल कौन सा, मल अर्थात शरीर से उत्पन्न हुआ मल जिसको मलमूत्र कहते, वो मल, ये जो धूली वगैरह जो है वो बाह्य कारण से इसमें उत्पन्न हुआ मल है। हा? पसीना धूल आदि बाहर से शरीर को चिपका और शरीर मलिन हुआ वो मल, और जो शरीर के अंदर ही तैयार हुआ वो मल, यानी मलमूत्र वाला मल। फिर
देखिए यहाँ पर पहले ऐसा लिया है कि पसीना रज अर्थात बाह्य कारण से शरीरों शरीर में, तो पहला वाला में है
और दूसरा वाला से,
और दूसरा है मल अर्थात शरीर से, यानी शरीर में यानी बाहर से आया हुआ और शरीर से शरीर के अंदर से तैयार हो गया, ऐसा लेना।
अब जो शरीर में जो कुछ विकार उत्पन्न होते हैं उसमें चलिए रक्त नेत्र ने लाल आंखें होना, जीव क्रोधित हो जाता है तो आंखें लाल हो जाती है ना, और कटाक्ष रूप बाणों को छोड़ना, जब किसी के प्रति कोई विशेष अनुराग होता है तो यानी राग और द्वेष दोनों के कारण शरीर में जो कुछ विकार उत्पन्न होते हैं वैसे उसको लिया यहाँ, आदि शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित। उसमें सब कुछ ले लेना जो कोई यानी जीव के राग द्वेष के कारण शरीर में जो कुछ यथा योग्य चेंजेस होते हैं वो सब यहाँ ले लेना। तो ऐसे शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित। अब उनका आकार यानी संस्थान कैसा है, तो समचतुरस्र संस्थान, ये तीर्थंकरों की अपेक्षा बात हो रही है। अन्य सामान्य अरिहंतों को छह संस्थान में से कोई भी संस्थान हो सकता है। वज्र ऋषभ ऋष हो गया, वज्र ऋषभ नाराज संहनन बर है गया, ऋषभ करना, वज्र ऋषभ नाराज संहनन, ये तो सभी अरियंतों को होगा। संस्थान तो कोई भी एक होगा, तीर्थंकरों को समचतुरस्र होता है, और जो जो कुछ श्रेणी मानकर यानी क्षपक श्रेणी मानकर ऊपर चले जाते हैं उनको वज्र ऋषभ नाराज संहनन होता है, और कहे दिव्य सुगंधमयी। ये देह का वर्णन चल रहा है, देह कैसी है, दिव्य है और सुगंधमयी है, जिसको परम औदारिक शरीर कहते हैं। सदैव योग्य प्रमाण रूप नख और रोम वाले, उनके नख और रोम बढ़ते नहीं है, ना ही बढ़े ना ही नख रोम, ना ही बढ़े ना ही बढ़े नख रोम, ऐसा ही आता है उसमें, ना ही बढ़े नख केश, केश और नख दोनों बढ़ते नहीं है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद नख भी नहीं बढ़ते और केश भी नहीं बढ़ते, यानी वहाँ जाना जाकर उनको केश लोच करना पड़े या नख काटने पड़े, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हाँ हाँ अतिशय है, हाँ जन्म से ही होते, हाँ ना ही बढ़े नख केश। केवल ज्ञान के अतिशय, जरा जरा नहीं होती वगैरह, जो कुछ शरीर में चेंजेस नहीं होते, यानी कोई बालक अवस्था में केवल ज्ञान हो गया तो वैसी उनकी शरीर की अवस्था रहती, उसमें वृद्धपन नहीं आता, आदि आदि बातें होती है। और कैसे आभूषण आयुध वस्त्र और भय रहित, यानी आभूषण रहित, आयुध रहित, वस्त्र रहित और भय रहित, सौम्य मुख आदि से आभूषण, यानी क्या पता चला पिनांग भाई? हाँ ज्वेलरी, बराबर है। आयुध है ने शस्त्र, शस्त्र ये कोई अस्त्र शस्त्र जो कुछ है वो सब, वस्त्र और भय रहित, ऐसे सौम्य मुख आदि से युक्त, यानी उनकी मुद्रा कैसी है, सौम्य मुद्रा के धारी है, ऐसे विशिष्ट शरीर को धारण करने वाले। और कैसे है कि मनुष्य देव मनुष्य तीर्यंच और अचेतनकृत, अचेतनकृत यानी जो नैसर्गिक कोई आपत्ति आती है, बहुत तीव्र वर्षा होना, ठंडी का पड़ना वगैरह, तो अचेतनकृत चार प्रकार के उपसर्ग, क्षुधा आदि 22 परिशह, यानी उनके उपसर्ग भी नहीं होते हैं और क्षुधादि परिशय भी उनके नहीं होते। राग द्वेष कषाय और इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित होते हैं। ये 18 दोष रहित है वगैरह वगैरह बातें आती है ना, कल जरा देख के आना 22 परिशय कौन से हैं, 18 दोष कौन से हैं, फिर हम गिनाएंगे तो फिर भले याद नहीं हो पर देखेंगे तो जरा ठीक लगेगा ना। और कैसे एक योजन के भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए, वो भय हुआ है उसको ब करना, बैठे हुए यानी जो समोसरण में बैठे हैं श्री मंडप में, वहां एक योजन तक, तो वो अपनी अपनी भाषा में जानते, तो कितनी भाषा है, तो 18 महाभाषा मेन लैंग्वेजेस और 700 लघु भाषाओं से युक्त ऐसे तिर्यंच देव और मनुष्यों की भाषा के रूप में दिव्य ध्वनि है। वो तिर्यंच अपनी भाषा में समझते, देव अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषाओं में, मनुष्यों में भी कितनी जाति है, कितनी है? हम कितने 18 पकड़ जाती, तो ये 18 महाभाषा भी उनकी हो जाती है। उस रूप परिणत होने वाली तथा न्यूनता और अधिकता से रहित मधुर मनोहर गंभीर और विषय देने स्पष्ट ऐसी भाषा के अतिशय को प्राप्त, यानी ऐसी अतिशय वाली दिव्य ध्वनि उनके होती है। ये सब बातें हम कल फिर दोबारा लिखेंगे। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी देवों के इंद्रों से विद्याधर चक्रवर्ती बलदेव नारायण राजा अधिराज महाराज अर्धमंडलिक मंडलिक महामंडलिक राजाओं से इंद्र अग्नि वायु भूति सिंह व्याल आदि देव तथा विद्याधर मनुष्य ऋषि और तिर्यंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त श्री महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, कितने इंद्र आते हैं, क्या होती है वगैरह वगैरह बातें, उसकी चर्चा हम कल करेंगे।